Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
इस तरह वो भी चला गया मां के आशीर्वाद लेने के लिए. आज मैं उपनिषद से थोड़ा बाहर हट गया, कहानी में चला गया. मां ने कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरा हो. मां तो देगी ये आशीर्वाद. मां का आशीर्वाद लेकर जब निकला तो कहते हैं यूं तो ऐसे सारे अभिमानी और घमंडियों के कोई गुरु नहीं होते हैं, फिर भी उसके कई गुरु रहे होंगे. कहा कि वो उसने विचार किया मां के आशीर्वाद के बाद गुरु का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, और संयोग से उसके जो गुरु है उस शहर से बाहर झोपड़ी में नदी किनारे झोपड़े बनाकर रहते थे. ऑन द वे वो रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए वो भी चल पड़ा गया गुरु के पास. कहा कि गुरु महाराज आशीर्वाद दो. तो बेटे ने गुरु जी ने कहा कि क्यों? बोले मैं सारे विश्व को जीतने के लिए निकल रहा हूं, आप आशीर्वाद दो कि मैं अपने लक्ष्य पर सफल हो जाऊं, अपने मिशन पर मैं सफल हो जाऊं. गुरुजी ने प्रश्न किया कि अरे बेटा, सारे विश्व को जीतकर तू क्या करेगा, क्या मिलेगा तुझको? वह गुरुजी, सारे विश्व को जीतूंगा, कोई मेरा विरोधी नहीं होगा, सारा विश्व मेरे साम्राज्य मेरे अधीन रहेगा, तब फिर कोई विरोधी नहीं होगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा. बोले बस इसी के लिए तो विश्व जीतने के लिए निकला है. अरे विश्व जीतकर जो आनंद की तू आशा कर रहा है, वो आनंद तो मैं इसी झोपड़ी में बैठकर मैंने प्राप्त किया है. आनंद को प्राप्त करने के लिए विश्व जीतने की जरूरत नहीं है, आनंद तो मुझे यही प्राप्त है. देख, मैंने किसी को नहीं जीता. घर में एक पत्नी थी, बड़े कर्कशा थी, नरसिंह मेहता के जैसे ही. उसको भी मैंने जीतने की कोशिश नहीं की, उससे हार कर मैं यहां आकर बैठा हूं. है? जीती किसने? वो पत्नी जीत गई मुझे, मैं उससे हारा हूं. क्योंकि उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं हार गया ना. मेरा बेटा था उसके साथ, वो बेटा भी मां के साथ लग गया और मुझे ही घर से निकालने में मदद किया उसने. मैं उससे भी हार गया, बेटे से भी हार गया, पत्नी से भी हार गया. तो अब यहां झोपड़ी बिना को बैठा हूं, आनंद से. किसी महात्मा ने मुझे जो तत्व का उपदेश किया है, बस आनंद से उसी तत्व का चिंतन करता हूं. मुझे बड़ा आनंद है, कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, क्योंकि मैंने जिसको जीतना था उसको जीता. तो जिसको जीतना चाहता है उसमें और मैं जिसको जीत चुका हूं उसमें बड़ा अंतर है बाबा. तो विश्व के बाहर के पदार्थों को जीतना चाहता है और इसी कारण से तू जीवन में हार जाएगा. और क्योंकि मैंने उनको जीता है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य जो षड्रिपु हैं, मेरे जन्म से मेरे शरीर में मेरे स्वरूप में विद्यमान रहकर पल पल में मुझे घात करते रहे, महात्मा की कृपा से मैंने उन शत्रुओं को जीत लिया यहीं झोपड़ी में बैठे बैठे. और आज देख ले, अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, न काम शत्रु है, न क्रोध शत्रु है, न लोभ शत्रु है, न मोह शत्रु है, न मद शत्रु है, न मात्सर्य शत्रु है. मेरे सामने अब कोई शत्रु रहे ही नहीं है. देख क्या आनंद, क्या सम्राज, क्या साम्राज्य की प्राप्ति हुई है. झोपड़ी में ही मैं चक्रवर्ती सम्राट हुआ है. महाभारत में श्लोक आया है, आशा दासो जगत दास निराशी अवनी पति. जब तक मन में ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये आशा जब तक तुम्हारे हृदय में आशा का भाव है, तब तक तुमको ये आशा सारे जगत का दास बनाकर रख देती है. निराशी, उस आशा को हटा दो, बस खत्म हो गई. निराशी हो जाओ, आशा खत्म हो गया, तो अवनी पति, सारे पृथ्वी का साम्राज्य हो तुमको प्राप्त हो जाए, सम्राट हो जाओगे. इसलिए तो संतों को महाराज कहते हैं बाबा, केवल राजा नहीं महाराज कहते हैं. क्योंकि उनको तो सारी साम्राज्य प्राप्त हो गया कुछ किए बिना, इसलिए वो महाराज हो गए। स्वराट भवती उपनिषद ने, छांदो के उपनिषद में कहा है, वो आत्मवीत आत्मज्ञानी व्यक्ति तो स्वराट भवती, सम्राट भवती। कहा कि ठीक, तुमको तो आनंद लेना है तो उसके लिए इस विश्व जीतने की जरूरत नहीं है, सब सेना को वापस कर दे, तू भी बैठ जा यहां, मैं जैसे साधना कर रहा हूं तुझे मैं वो उपाय बता दूंगा, इसी तरह तू अपने षडरिपुओं को जीत ले, सारा विश्व अपने आप ही जीत जाएगा और सारा विश्व जीतने का आनंद तो इसी झोपड़ी में तुझे मिल जाएगा। उतनी लक्ष्य के लिए तू विश्व जीतना चाहता है तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वापस कर दे। लेकिन क्यों मानता वो घमंडी, वो अहंकारी, तो युद्ध चला गया, सारे विश्व को जीता, लड़ते हुए गया, लड़ते हुए गया, और एक दिन उसने वास्तव में वो जो लक्ष्य लिया था वो जीत गया वो विश्व को। कहते हैं उसके बाद जब वापस आने लगा था तो उसको डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, तो रास्ते में वो ऐसा बीमार पड़ गया कि लाख उपचार करो तो भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और उसने घोषणा कर दी कि यदि कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य ये मेजे यदि इस रोग से मुक्त करा दे तो मैं ये जो जीता हुआ साम्राज्य उसका आधा मैं दे दूंगा, कोई मुझे निरोग तो कर दे, रोग से मुक्त तो कर दे, और ज्यादा नहीं भी कर सकता है तो मैं अपनी मां के पास पहुंचूं, इतनी भर के लिए मुझे जिंदा रख दे वे। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि अब वो भी आशा नहीं है, मैं पहुंचूंगा ये संभव नहीं है। कहते हैं कि कोई तैयार नहीं हुआ, कोई उपचार काम में नहीं आया और रास्ते में वह मर गया। क्या फायदा हुआ, जिसको जीतकर आनंद का अनुभव करना चाहिए था वो तो किया नहीं। ये तो संसार का यही तो तेन त्यक्तेन मुंजी था, ये इस पर व्याख्या चल रही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजी था, इन पदार्थों को तुम राग भाव से मत भोगो, त्याग भाव से भोगो। त्याग भाव से भोगने वाला व्यक्ति इन साधनों का दुरुपयोग नहीं करेगा और राग भाव से भोगने वाला व्यक्ति इन साधनों का दुरुपयोग करता है। अब आप कहोगे कि महाराज भोग में तो राग ही होगी, त्याग कहां से होगा? अरे भाई, भोग में भोग होता हुआ भी त्याग रहता है, मन में ये भावना तीव्र रहता है कि ये कब छूटे, ये कब तक इसका सेवन करना पड़ेगा मुझे, इसको कब छूटेगा, मन में ये भावना होते हुए भोगते हो। जैसे आप लोग औषधि दवाई खाते हो, मधुमेह के औषधि खाते हो, ब्लड प्रेशर के औषधि खाते हो, औषधि खरीद के लाते हो, तो खरीद के समय में क्या तुम्हारे मन में राग होती है? और वो औषधि क्या तुम ये कहते हो भोगते समय कि ईश्वर करे जीवन में कभी न छूटे, ये राग रहता है? है रहता है, बोलो। भगवान के पास जाकर प्रार्थना करोगे कि महाराज आपकी कृपा से मुझे औषधि मिल गई है, भगवान है कृपा करना ये औषधि कभी न छूटे जीवन के अंतिम क्षण तक, ये अटैचमेंट रहता है वो औषधि के साथ, है ये राग रहता है, है? फिर भी तुम उसको भोगते हो, त्याग वृत्ति से भोगते हो। ये छूट जाए तो अच्छा है, यदि कोई ऐसा कारण बन जाए और ये छूट जाए तो क्या आनंद है। ये भावना उस औषधियों के प्रति रहती है कि नहीं? ये व्यक्ति बोला महाराज त्याग भाव से कैसे भोगा जाए? अरे भाई, त्याग भाव से भी भोगते हो, औषधि को तुम राग से भोगते हो कि त्याग से भोगते हो? है? रागी तो उसके अंदर त्याग भावना है, राग तो है ही नहीं, अटैचमेंट तो है ही नहीं। जो भी महात्मा मिलेगा, जो भी वैद्य मिलेगा, जो भी डॉक्टर मिलेगा, सबसे कहोगे महाराज ये औषधि छोड़ने का कोई उपाय है, ये औषधि छूट जाए कोई उपाय है, इंसुलिन छूट जाए कोई उपाय है? छोड़ने की इच्छा करते हुए उसको भोगते हो कि नहीं, बोलो तो इंसुलिन को है? कभी ना छूटे ऐसी किसी की भी वृत्ति नहीं रहती है, तब महात्मा जो उपाय बताएगा कि उसको हटाने का, तुम उसी को पहले करने चाहोगे। रामदेव जी कहेंगे कपालभाति करो, किस लिए कहेंगे? वो इंसुलिन छूट जाए इसके लिए कहेंगे है? तो तुम फिर कपालभाति करने लग जाते हो, किस लिए कपालभाति कर रहे हो? तो बोले रामदेव जी ने कहा कि बस कपालभाति करो तो इंसुलिन छूट जाए। तो ये संसार को तुम त्याग भाव से भोगोगे तो इसको छोड़ने का ही उपाय करते रहोगे। कैसे छूटे, कब छूटे? जब अंदर छोड़ने की भावना है तो ये जबरदस्ती पकड़ता नहीं है बाबा। ये संसार तो तुम्हें जबरदस्ती तब पकड़ रहा है कि अंदर से तुम पकड़े हुए हो, इसलिए बाहर से पकड़ा। तुम चाहते हो तो पकड़ रहा है वो, अब तुम चाहोगे ही नहीं तो कहां से पकड़ेगा। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं। कुछ महात्मा लोग तीर्थ यात्रा कर रहे थे, टंडी के प्रदेश में जाना था, तो एक नदी में कंबल किसी का बह गया था, है ना? महात्मा को रात तो ठंडी लग रही थी, तो उसने विचार किया ये कंबल को निकाल लो तो सुखा लो तो रात को ओढ़ने में काम आ जाएगा। राग हो गई उसको कंबल के प्रति, तो नदी में कूद पड़ा और उसको पकड़ लिया महात्मा ने। संयोग से वो कंबल न होकर भालू बह रहा था। संयोग से क्या था, वो कंबल न होकर वो भालू बह के आ रहा था कई नदी से। जब महात्मा नजदीक पहुंच गया तो भालू ने भी उसको पकड़ लिया। वो कंबल पकड़ने गए, भालू ने उसको पकड़ लिया महात्मा को। महात्मा को पता चल गया कि अरे ये तो कंबल नहीं, ये भालू है, इसने पकड़ लिया मुझे। अब बचने की बहुत लाख कोशिश करते हैं, वो बच ही नहीं पा रहे, किनारे आ ही नहीं पा रहे, बहते जा रहे। तो किनारे में खड़े हुए और साथी महात्माओं ने कहा कि अरे महात्मा, कंबल को नहीं ला सकता है तो छोड़ दे, तू आ जा। तो महात्मा ने वहीं से कहा, नदी से ही कहा कि अरे भाई, मैंने तो कंबल का कपका छोड़ा, ये कंबख्त कंबल ही ऐसा है कि मुझे नहीं छोड़ रहा है, है? ये संसार पहले हमने पकड़ा, पकड़ने के लिए हम गए थे, तभी नहीं पकड़ रहा है। ये तो संसार तो भालू है, इसीलिए तब से कहा भालू का कंपट। जो छोड़ना चाहो फिर भी न छोड़े, तो वही तो भालू का कंपट है। तो वहीं से शुरू हुआ ये कहावत, छोड़ता ही नहीं है। तो तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्याग भाव से भोगो, उपयोग करो। त्याग भाव से भोगोगे तो उसका उपयोग करोगे, राग होगी तो दुरुपयोग करोगे। और संसार के पदार्थ का दुरुपयोग करना ही तुम्हारे लिए अभिशाप है। आज तक जो भी इस मनुष्य जीवन में प्राकृतिक विपदा आई है, वो सब प्राकृतिक पदार्थों का सदुपयोग करने की अपेक्षा इसका दुरुपयोग, दोहन शुरू हुआ तब से फिर परमात्मा का प्रकोप, इसको प्राकृतिक प्रकोप कहो या अनावश्यक प्रकृति के साथ छेड़खानी, ये उसका प्रकोप है। त्याग भाव नहीं रहा, राग भाव रहा। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोगो, उपभोग करो, उपयोग करो, उपभोग मत करो, उपयोग करो। उपयोग आवश्यकता अनुसार की जाती, उपभोग अनावश्यक भी हो जाता है। जब अनावश्यक उपभोग हो जाता है तो सारी समस्याएं, कभी किसी के यहां पार्टी में जाओ, बढ़िया देख लिया, अनेक वैरायटी थे, ये भी खा लो, 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 एक एक चम्मच करते करते खाते खाते इतना ओवर डाइट हो जाता है कि फिर कल से बीमार शुरू हो गए। और घर में होते तो क्या ये इतनी वैरायटी खाते नहीं? खाते तो अपने आप उपयोग हो गया भोजन का, उपभोग नहीं हुआ। पार्टी में गए तो जो देखा वही खाने की इच्छा हो गई, ये थोड़ा खा लो, ये थोड़ा खा लो, खाते खाते ओवर डाइट हो गया, तो फिर कल से फिर बीमार हो जाओ, यही तो समस्या है। तीन त्यक्तीन भुंजी था, उसी को कहते हैं एनावृतम नित्यम इदम ही सर्वम, ये अवधारणा निश्चय एन परमात्मना सगुण निराकार परमात्मा के द्वारा सगुण साकार ये विश्व प्रपंच आवृत हुआ है, ढका हुआ है, नित्य ढका हुआ है। ऐसा नहीं कि कभी ढके और कभी छोड़ देवे, नित्य ढका है क्योंकि सब व्याप्त है। कई बार किसी को समझ में नहीं आती है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है, आत्मा सब जगह विद्यमान है, उसी आत्मा के रहने पर जीवन सुरक्षित है। तो ये जब बात सुनते हैं तो कुछ विचार करने वाले व्यक्ति फिर शंका करते हैं, आत्मा सर्वव्यापक है तो फिर के मरे हुए मुर्दे में भी आत्मा है, पूछते हैं फिर है, पूछते हैं। सामान्य नियम सामान्य व्यवहार क्या कहता है, जिंदगी में भी आत्मा, जिंदगी में ही आत्मा है, मरे हुए में आत्मा नहीं है, यही ना सामान्य व्यवहार कह रहा है। और वेदांत क्या कहता है, आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, हर वस्तु में है, ईशावास से विदम सर्वम। तो उसने मुर्दे को छोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि उसने छोड़ा और वो मुर्दा हो गया, उसके छोड़ने से मुर्दा नहीं हुआ है, आत्मा ने छोड़ दिया इसलिए मुर्दा हुआ। ये यदि तुम लोग समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। उसके मुर्दा होने में कारण क्या है, क्योंकि जिंदा होने में कारण जो था वही मुर्दा होने में कारण है। शरीर मुर्दा होने में कारण आत्मा नहीं रहा इसलिए मुर्दा हुआ, ये अर्थ नहीं है। शरीर जिंदा होने में कारण प्राण था, सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर नहीं रहा इसलिए वो मुर्दा हुआ है। सूक्ष्म शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है बाबा। सूक्ष्म शरीर तो उत्क्रमण आक्रमण होता है, अवरोहण अवरोहण होता है, आरोहण अवरोहण, जाना आना सूक्ष्म शरीर का होता है, आत्मा का जाना आना नहीं होता। और इस शरीर को जीवंत बनाया था सूक्ष्म शरीर, प्राण के संयोग से, अंतकरण के संयोग से, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के संयोग से, सूक्ष्म शरीर के संयोग से ये जीवन जीवंत प्रतीत हुआ था। अब वो सूक्ष्म शरीर का संयोग नहीं रहा, इतना ही है। मृत्यु देह प्राण वियोग है, जन्म देह प्राण संयोग है। ये नहीं है कि जन्म आत्मा संयोग, देह और आत्मा का संयोग है तब वो जन्म है, और आत्मा और देह का वियोग है तब वो मृत्यु है, ऐसा अर्थ नहीं कर देना। यदि आत्मा और शरीर का जो वियोग है वो मृत्यु है कहोगे तो फिर आत्मा को जो सर्वव्यापक का कहा है इसका क्या अर्थ करोगे। तो सर्वव्यापक का अर्थ तो वह मुर्दे में भी है, इसलिए ना तो सर्वव्यापक है। यदि मुर्दे को छोड़कर सर्वव्यापक होगा तो उसकी व्यापकता कहां रही, वो तो परिच्छिन्न हो गया कि नहीं, मुर्दे में नहीं है तो उसकी व्यापकता कहां रही। तब उस चैतन्य सामान्य चैतन्य को जो सर्वव्यापक श्रुति, जिस चैतन्य जिस आत्मा जिस परमात्मा के लिए सर्वव्यापक कह रही है, वो सर्वव्यापक परमात्मा को सामान्य आत्मा को सामान्य ब्रह्म को सामान्य चेतना को जो कि मुर्दे में भी अस्थिवाती प्रिय के रूप में विद्यमान है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब तो अस्थिभाति प्रियता ये जो परमात्मा का भाव है वो तो मुर्दे में भी है ना, इसलिए तो कहते मुर्दा है। मुर्दा तो मुर्दा है, क्या है यही ना सत्ता है, परमात्मा की उपस्थिति है वहां, ये क्यों नहीं देख रहे हो। उस मरे हुए मूर्ति में जो है पना तुम प्रयोग कर रहे हो, यही तो परमात्मा की उपस्थिति। अरे भाई परमात्मा के बिना तो जीवन भी सिद्ध नहीं होगा, परमात्मा के बिना तो मुर्दा भी सिद्ध नहीं होगा। हाँ, परमात्मा के बिना तो जीवन भी सिद्ध नहीं होगा, परमात्मा के बिना मुर्दा भी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन जिसको हम जीवन कहते हैं वो प्राण देह संयोग है, और जिसको हम मुर्दा कहते हैं प्राण देह वियोग है। आत्मा देह वियोग नहीं है भाई, मृत्यु आत्मा देह वियोग नहीं है, सर्वव्यापक आत्मा तो मृत्यु में भी संयुक्त ही है। ये एनावृतम नित्यम इदम ही सर्वम ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः वो क्या है बोले ज्ञः ज्ञान रूप है परमात्मा को परमात्मा के रूप में जानने के लिए ज्ञान को परमात्मा के रूप में जानना निश्चय करना बहुत जरूरी है क्योंकि परमात्मा ज्ञान के अलावा दूसरे स्वरूप में तुम्हारे हृदय में व्यक्त होगा ज्ञान के अलावा दूसरे स्वरूप में यदि वह प्रतीत होगा तब फिर वह तद्रूप भाव की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होगा परमात्मा यदि ज्ञान से भिन्न के रूप में अस्तित्व में रहेगा तो वह तो फिर परमात्मा नहीं होगा क्योंकि परमात्मा से भिन्न तो अनात्मा ही है आत्मा से भिन्न तो अनात्मा है इसलिए परमात्मा का अनुभूति तो ज्ञान के रूप में ही होगा अन्यथा नहीं हो सकता है इसलिए ज्ञान कालकारो ते ध्यान योगे ने जो पहले अध्याय में ऋषियों ने जो चिंतन करके बाद में निष्कर्ष किया वो चिंतन का प्रतिफलन ये हुआ है कि वह काल का भी काल है काल तो आध्यासिक है जिस अधिष्ठान में काल का अवधारणा समय की अवधारणा हुई समय काल तो ये विश्व सृष्टि का अंग है परमात्मा का अंग नहीं है काल विश्व सृष्टि का अंग है काल विश्व का अंग है परमात्मा का अंग नहीं है क्योंकि परमात्मा निरंश होने के कारण काल परमात्मा में नहीं है जगत सांस्व होने के कारण सावयव होने के कारण ये काल भी जगत अंतपाती है काल जगत का ही एक हिस्सा है जब सारे विश्व को ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है कह दिया गया है तो फिर काल को भी उसी ने उत्पन्न किया है इसलिए काल का रहा अमेरिका एक स्टेट है अमेरिका पूरा यूएसए बहुत बड़ा राज्य है राष्ट्र है और मुझे लगता है कि कुछ स्टेट ऐसे हमारे भी जैसे पश्चिम के जम्मू कश्मीर और सुदूर पूर्व के मणिपुर नागालैंड है कितना दूरी है सूर्य के अक्षांश को लेकर यदि विचार करते हैं तो घंटों का डिफरेंस है कि नहीं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूर्य उदय के अक्षांश को ले लो तो पूर्व का जो मणिपुर है नागालैंड है मिजोरम है वहां का सूर्य उदय का समय और जम्मू कश्मीर का सूर्य उदय के समय में घंटों का फर्क पड़ता है फिर भी हमने भारतीय स्टैंडर्ड टाइम एक ही रखा है कि नहीं है हमारी घड़ी तो एक ही बोलती है ना हमारे पास तो घड़ी एक ही है ना भारत में अमेरिका में तो 6 घड़ी है एक स्टेट का दूसरा टाइम है दूसरे स्टेट का दूसरा टाइम है तीसरे स्टेट का तीसरा टाइम है हम एक बार टेनेसी के उसमें नैशविल से एटलांटा जा रहे थे बोले टेलीफोन करके कहा कि वहां कितना बजा है बोल के पूछता है वो हमको तो आश्चर्य लगा यहां जितना बजा वही हम तो भारत में तो यही सोच रहे हैं ना है ना हम कभी ये थोड़ी पूछते हैं कि जम्मू में किसी को फोन करके कहते हैं वहां कितना बजा है हम अपने घड़ी देख लेते हैं तो यहां जितना बजा है वहां उतने बजे क्योंकि हमारे पास तो एक ही टाइम था और हमारा संस्कार तो टाइम एक ही होता है एक हर राष्ट्र का अपना अपना टाइम होता है एक होता है अब वहां तो अमेरिका में गए जबकि कोई दूरी नहीं था नैशविल और एटलांटा के बीच में 200 माइल का दूरी था उतनी में 1.5 घंटे का डिफरेंस क्या बात है भाई अब ये क्या है बोले वो तो राज्य व्यवस्था ने अपने समय की व्यवस्था करके हमारे यहां इतना बजेगा तुम्हारे यहां इतना बजेगा वो तो अपने अपने समय की सृजना उनकी अपनी अपनी है कि नहीं बोलो उन्होंने जो टाइम की व्यवस्था की 6 घड़ी अमेरिका में वो क्या ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है बोलो तो वो काल समय समय काल का पर्यायवाची है काल कहो या समय कहो एक ही चीज है वो तो जीव सृष्टि है जब एक जीव ही अपने हिसाब से अपने समय का सृजना करता है तो सारी जो समष्टि काल है समय है उसका रचना करने वाला तो वही परमात्मा है। इसलिए सकालकारो गुणी सर्वविधिः, और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ओम।